अध्याय 47। स्याही की दवात जमीन पर जोर से फेंकी गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। जयदेव ने अपने सामने खड़े मुड़ी हुई नाक वाले व्यक्ति को ऐसे घूरा मानो वह किसी को निगल जाना चाहता हो और गुस्से से बोला, तुम बेकार इंसान हो, यहां तक कि रविंदर भी मारा जा चुका है। आखिर हुआ क्या था, सब कुछ विस्तार से बताओ, नहीं तो अब तुम गुप्त सेवा के प्रमुख नहीं रहोगे। जयदेव इतना गुस्से में था कि उसकी समझ जैसे खो गई थी। मुड़ी नाक वाले व्यक्ति का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पता था कि अगर वह अपनी यह पदवी खो देता है तो उसका अंजाम केवल एक ही होगा, मिटा दिया जाएगा। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। वह झुकते हुए बोला, महाराज, मेरी जांच के अनुसार रविंद्र की हत्या हेवनली नेट की एक गोल्ड कार्ड मिशन के तहत की गई थी। भले ही हमें यह नहीं पता कि मिशन किसने लिया, लेकिन घटनास्थल के आधार पर एक बात निश्चित है, हत्यारा एक सिल्वर कार्ड असैसिन था। जयदेव ने ठंडी निगाहों से कहा, कचरा, मुझे रविंद्र की शक्ति बहुत अच्छी तरह पता है। सिल्वर कार्ड असैसिन, बकवास। यहां तक कि उसके अधीन काम करने वाले दोनों भाई बहन भी एक सिल्वर कार्ड असैसिन को आसानी से हरा सकते थे। दोनों ही सिद्धावस्था विशेषज्ञ थे और रविंदर तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर था। तुम कहना चाहते हो कि ऐसे तीन लोगों को एक सिल्वर कार्ड असैसिन ने मार दिया? क्या मैं बेवकूफ हूं? मुड़ी नाक वाला व्यक्ति मन ही मन कड़वा मुस्कुराया। उसने सच्चाई बताई थी, लेकिन सम्राट उसे मानने को तैयार नहीं था। महाराज, रविंदर बहुत शक्तिशाली था, उसकी निजी सुरक्षा वह खुद संभालता था, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस बार जब उसकी हत्या हुई तो मौके पर सिल्वर कार्ड असैसिन का मुखौटा पाया गया, लेकिन मेरा मानना है कि हत्यारा असल में गोल्ड कार्ड असैसिन था, जिसने चांदी जैसा मुखौटा पहनकर रविंदर को भ्रमित किया। उसी भ्रम के कारण रविंदर ने अपने दुश्मन को कम आंका और मारा गया, उसने जल्दी से कहा। जयदेव कुछ देर सोचता रहा। जब उसने देखा कि सम्राट को अब भी शक है तो उसने तुरंत कहा, महाराज, एक और संभावना है। पूर्वी राजकुमार अविनाश शायद रविंद्र से परेशान था, इसलिए उसने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजकर उसकी हत्या करवा दी। वह नैनेस्तुवा हमें भ्रमित करने के लिए चांदी का टूटा मुखौटा वहां छोड़ गया होगा। वह मन ही मन सोचने लगा, माफ करना यन्या अविनाश, इस मुश्किल घड़ी में मुझे सब कुछ तुम्हारे ऊपर डालना ही होगा। और सच में, जयदेव बोला, सही कहा, यह जरूर अविनाश का काम है। वह बगावत करना चाहता है, लेकिन डरता था कि रविंदर उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने उसे मरवा दिया, और ताकि मैं इसे समझ ना पाऊं उसने यह चांदी का मुखौटा छोड़ दिया। यह मूर्ख, अगर सोने का मुखौटा रख देता तो शायद यह और विश्वसनीय लगता। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। अविनाश, तुम बगावत करना चाहते हो, इसमें अब कोई शक नहीं। इस बार तुमने मेरे एक पंख को काट दिया है। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जयदेव क्रोध से कांप उठा। रविंदर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बीते 20 वर्षों में जब भी किसी पर संदेह होता या कोई रहस्य पता लगाना होता, वह रविंदर को भेजता था, और रविंदर कभी असफल नहीं हुआ। लेकिन अब रविंदर मर चुका था। भले ही उसके अधीन अब भी कई जासूस थे, लेकिन कोई भी रविंदर जितना कुशल नहीं था। उसकी मृत्यु सम्राट के लिए एक पंख खोने जैसा था। उसके भीतर की सारी घृणा अब अविनाश की ओर केंद्रित हो गई थी। वह पहले से ही कई वर्षों से बुरे सपनों से परेशान था, और अब जब उसे पता चला कि अविनाश बगावत की तैयारी कर रहा है ऊख से रविंदर की मौत, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। अविनाश, अगर मैंने तुम्हारे रहेजा वंश को नष्ट नहीं किया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतना कहते हुए जयदेव ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला तोड़ दिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह बोला, तन्मय को बुलाओ, तुम जा सकते हो। मुड़ी नाक वाले व्यक्ति ने राहत की सांस ली कि सम्राट अब गुस्सा उस पर नहीं निकालेगा। उसे अच्छी तरह पता था कि सम्राट की सेवा करना शेर के साथ रहने जैसा है, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। जी महाराज, वह झुककर बोला और चला गया। जयदेव अब भी चुपचाप बैठा था, टूटी हुई दवात को घूरते हुए। कुछ ही देर में बाहर से कदमों की आवाज आई। तन्मय, अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक विचित्र तथा दुष्ट दिखने वाला युवक अंदर आया। यह कोई और नहीं बल्कि तन्मय डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का प्रमुख था। जहां जासूस जानकारी इकट्ठी करते थे, वहीं यह गुप्त बल सम्राट के सभी दुश्मनों को अंधेरे में खत्म करता था। तन्मय देखने में जवान लगता था, लेकिन वह 40 साल से सिद्धावस्था स्तर पर था। सिद्धावस्था विशेषज्ञ, लगभग 500 वर्ष जीते हैं, इसीलिए उनका बुढ़ापा बहुत धीरे आता है। महाराज, उसने झुककर कहा। जयदेव ने कुछ पल सोचा, फिर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, उस कृष्णा से कह दो कि मैं मान गया हूं, लेकिन उस डिमोनिक बीस्ट सेबर टूथ टाइगर के शरीर का हर हिस्सा मुझे चाहिए, खासकर उसकी 16 तेज तलवारें, उनमें से एक भी गायब नहीं। ओ नहीं, होनी चाहिए। तन्मय ने हल्की मुस्कान दी और कहा, महाराज अत्यंत बुद्धिमान है। कृष्णा ने वादा किया है कि अगर उसे एक ट्रांस हेवन डायग्राम मिल जाए तो वह उस सेबर टूथेड टाइगर की पूरी लाश बिना कुछ रखे आपको दे देगा। अच्छा है, जयदेव ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं लगता कि कृष्णा मुझसे चाल चलने की हिम्मत करेगा। कृष्णा पूरे शिवांतरा कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा व्यापारी था, जो राठौर राजवंश में स्थित था। उसका कारोबार पूरे महाद्वीप में फैला था। उसने किसी अज्ञात तरीके से अपने उच्च प्रशिक्षित लोगों को भेजकर एक डेमोनिक बीस्ट सेबर टूथेड टाइगर को मार गिराया था। यह राक्षसी बाघ अपने पीठ पर 16 तलवार जैसे नुकीले कांटे रखता था, जो उच्च दैवीय स्तर वेपन्स के बराबर शक्तिशाली थे। उसके पंजे भी हथियारों में बदले जा सकते थे, इसलिए उसे मारना मानो जीवित खजाना पाना था। शायद केवल अमृतावस्था ही उसके बराबर हो सकते थे। कोई नहीं जानता कि कृष्णा ने उसे कैसे मारा। तन्मय ने बताया, महाराज कृष्णा के कई गुप्त ठिकाने हैं। इस बार उन्होंने जंगल में बाघ मारा है और अभी वे एक गुप्त अड्डे पर हैं जो जंगल के पास स्थित एक शहर में है। वे उस बाघ को खुल्लम खुल्ला राठौर राजवंश नहीं ले जा सकते। पहले उसे उसी शहर में टुकड़ों में बांटेंगे और फिर हिस्सों में वापस भेजेंगे। लेकिन वह शहर 3 पूर्वी प्रदेश महाद्वीप में आता है। यह सुनकर जयदेव समझ गया कि मामला पेचीदा है। विशाल जंगल महाद्वीप के सबसे पूर्वी हिस्से में था और उसके पास ही देवान राजवंश था। इन तीनों पूर्वी झीलों पर अविनाश का नियंत्रण था। पहले तक अविनाश खुलकर ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन अब उसके इरादे विद्रोही थे, इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। तन्मय, अपने पिताजी एल्डर संतोष को कहो कि वे खुद विशेषज्ञों का एक दल लेकर जाएं और लेन देन पूरा करें, जयदेव ने आदेश दिया। जी महाराज, जब तक मेरे पिताजी मौजूद हैं कोई गलती नहीं होगी, तन्मय ने झुककर कहा। जयदेव ठहाका लगाते हुए बोला, हां हां, मेरे पास केवल सेकंड ट्रांस हेवन डायग्राम है। जब तक तीनों डायग्राम नहीं मिलते, उनकी गूढ़ तकनीक का रहस्य नहीं खुल सकता। इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोग, यहां तक कि अमृत साधक, इन्हें पाकर असफल रहे। मेरे लिए यह बेकार है। तो इसे देकर अगर मुझे एक सेबर टूथ्ड टाइगर की लाश मिल जाए तो यह सौदा बुरा नहीं, तन्मय बोला। महाराज सही कहते हैं, कृष्णा केवल खजाने इकट्ठा करने का शौकीन है। उसे बस यह डायग्राम चाहिए अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। ठीक है तन्मय, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस बाघ से मुझे कई उच्च स्तर के दैवीय स्तर हथियार मिलेंगे। एल्डर संतोष के अलावा और भी कई सिद्धावस्था एक्सपर्ट्स भेजो। याद रखना, कोई गलती नहीं। चिंता न करें महाराज, जब मेरे पिताजी कदम उठाएंगे वे आपको निराश नहीं करेंगे, तन्मय ने कहा। जयदेव ने एल्डर संतोष का नाम सुनकर गहरी सांस ली। उसे पूरी तरह संतोष था। क्या धनुष अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या वह अकेले ही अगले स्तर का प्रशिक्षण शुरू कर सकेगा, या फिर उसे किसी और मदद की जरूरत पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड सिर्फ नॉवेल सीरीज पर।